యశోదానందన వ్రజనరంగన యశోదానందన వ్రజనరంగన యమునా తీరా మనుచారి వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానంజనశలాకయా చక్షుర్నమిళితం యేనా తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా వయం నరాతి స్వపదాంతిగం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగరజాతం సాగరణ రఘునాథన్వితం తం సజీవం సాధవైతం సావద్భుతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే భక్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసృతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాదకి హరే కృష్ణ. తో పిచ్చి క్లాస్ మే క్యా హువా థా, క్విక్ రివిజన్ ఫ్యాన్ కి జరూరత్ హై, జరూరత్ హై తో లగా సక్తే హై. అబ్ ఇస్మే రెగ్యులేటర్స్ లగ్ జాయేంగే తో ఫిర్ స్లో చలా సక్తే హై. ఉస్కో జైసే ఉస్కో చల్ ఉస్మే రెగ్యులేటర్ హై సో ఫిర్ క్యూ స్లో చల్ రహా హై, బంద్ నహీ హోగా. ఓకే బతాయే, కుచ్ యాద్ నహీ. పురాణ పిచ్చి క్లాస్ మే నిందా కే బారే మే టాపిక్ క్యా థా పిచ్చి బార్ నిందా.
శరణాగతి साथ होंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनके ही शिष्य के रूप में शिक्षा ली। तो मुझे बताया गया था कि जो गौड़ीय संप्रदाय के जो
और कोई बताया और कोई ये भी पुराना है, पुराना है। पिछली बार चर्चा हुई, निंदा नहीं करनी चाहिए।
अगर कोई निंदा कर रहा है तो या तो उसी स्थान को छोड़ दो या आत्महत्या कर दो।
और मत जो बताइए हाँ, स्थान छोड़ देना चाहिए, प्राण नहीं है ना। और
निंदा से बचने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने अहंकार का त्याग करना है।
अहंकार ये होता है ना कि हम मैं जानता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, हमें सोचते हैं तब दूसरे में दोष देखते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं दूसरे में दोष देखते हैं तभी तो निंदा करेंगे, है ना। हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला अच्छा है तो फिर तो निंदा होगी नहीं, उसकी तारीफ करेंगे। अहंकार ही है, हम अव्वल दर्जे के मूर्ख होंगे लेकिन फिर भी क्या सोचेंगे सामने वाला व्यक्ति हमसे ज़्यादा मूर्ख है ना। ऐसे कभी होता है जैसे कि मान लीजिए कोई 60% भी लिख रहा है तो ऊपर वाले व्यक्ति को देख के सोचता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन अपने से नीचे जितने को लिखता है सबके साथ निंदा करता है अपने, पढ़ते पढ़ते वो नहीं 55% आ गया है, देखो हमारा 60 आया है ना। तो ये स्वभाव जो है बना रहता है, ये बद आत्मा का स्वभाव है दोष देखना। जैव धर्म भक्ति ठाकुर बोलते हैं किसी आपके आदमी को कैसा पता चले कि वो बद्ध है, वो जब तक दोष देखता रहेगा। जब उसके अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, जीरो हो गई, ईर्ष्या जीरो हो गई है, इसका मतलब कहाँ है, गोलोक वृंदावन में है, वो यहाँ है नहीं। गोलोक वृंदावन में कोई द्वेष नहीं करता किसी से, जैसे सारे पुष्प हैं जितने भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जैसे तुलसी की बारी आती है सब पीछे हट जाते हैं, बोलते तुलसी भगवान को प्रिय है, पुष्प सार कहा गया तुलसी को तो उसको समर्पित किया जाए, ऐसे कहते हैं। तो ये यही भाव है, ऐसे भक्त को समाज में जो अच्छा कार्य करता है, जो अच्छा एक्सपर्ट है उसको हम आगे करते हैं। गाने में एक्सपर्ट है, वर्शिप में एक्सपर्ट है ना, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, डेकोरेशन में एक्सपर्ट है, उसको आगे करना चाहिए। हम आगे नहीं करते हैं, हम सोचते हम ही खुद करें, इसका मतलब हम लोग ईर्ष्या करते हैं, जिसका लक्षण है ना। जैसे प्रभु जी मृदंग बजाते हैं, अच्छा हम बोले कि नहीं मैं मृदंग बजाऊंगा, इसको नहीं आता हूँ ना, बिल्कुल कभी कुछ आप कहीं बजाए नहीं हो और बजाने के लिए बोले जबरदस्ती बजाना चाहता हूँ, तो उसके मतलब ईर्ष्या ईर्ष्या करते हैं। हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं। तो कृष्ण की प्रसन्नता किस में होगी, बेस्ट में होगी। जैसे श्रीमती राधा रानी को सब आगे कर देते हैं, जब श्रीमती राधा रानी आगे रहती है क्योंकि कृष्ण ज़्यादा पसंद करते हैं राधा रानी को, वो भी गोपी हैं, बाकी सभी अन्य गोपियाँ हैं, पर राधा रानी को आगे कर दिया जाता है। क्यों, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ना। तो यही समझना हमें कि निंदा कब करते हैं, जब अपने आप को बेस्ट समझते हैं, और तारीफ कब करेंगे, प्रशंसा कब करेंगे, स्तुति कब करेंगे, जब दूसरे को बेस्ट। तो दूसरे के गुणों को लिखना चाहिए अपने डायरीज में, रोज लिखिए, किसी को अच्छा करते हुए देखिए, मैंने बताया था उसको तुरंत क्या चाहिए, तारीफ कीजिए तुरंत, बाद में नहीं, जब मौका मिलता है। कैच द पीपल डूइंग राइट थिंग, अच्छा करते हुए लोगों को पकड़ो, बुरा करते हुए तो बहुत पकड़ा हमने, बुरा करते हुए पकड़ रहे हैं लोगों को, उसके बदले गलती देख रहे हैं, गलती देख रहे तो उसकी निंदा करेंगे। और प्राण नहीं त्याग सकते, प्राण त्याग नहीं। तो किसी को क्षत्रिय के हिसाब से बताया गया सामने वाले को मार देना चाहिए अगर भगवान की निंदा करता है तो, क्षत्रिय है ना, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, अपना प्राण भी त्यागना और जरूरत नहीं है सर। तो ये बहुत दोनों कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि जैसे सब लोग सारे संसार में आजकल निंदुक हैं, सबको मारते रहेंगे तो क्या होगा, है ना, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, शास्त्रों का आधार लेना चाहिए, शास्त्रों से क्या करना चाहिए, शास्त्र फेंक के मार देना चाहिए, नहीं दब के मर जाए उसी से, क्या करना चाहिए, हाँ लेकिन क्या भाव क्या होना चाहिए शास्त्र का, इसको इतना सुनाऊंगा उसके कान से खून निकलने लगेगा, नहीं इतना सुनाना है कि कन्विंस हो जाए वो, इतना सुनाना है कि वो मानने लगे हाँ हाँ नहीं कृष्ण महान है, भक्त महान है, ऐसे सुनाना चाहिए, झगड़ा नहीं, चैलेंज नहीं, आक्रोश नहीं। जैसे एक बार मदन मोहन प्रभु है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है रशिया के, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, अभी कभी आपने सर किसी संडे को लेक्चर भी सुना होगा, रशियन है। तो एक बार बहुत बड़ा डिबेट हुआ बाइबल और भगवद गीता पर, तो मदन मोहन प्रभु को भेजा गया, वो भी बहुत शास्त्रों को अच्छे से जानते हैं, और उधर से दूसरा बाइबल का जो अच्छा ज्ञाता व्यक्ति आया जो क्रिश्चियनिटी को जानता है, अच्छा क्रिश्चियन धर्म को बहुत अच्छे से मानता है, दोनों में चर्चा हुई और 9 जजेस बैठे थे, पैनल बैठी थी मार्क्स देने के लिए कौन अच्छा है। तो वो बहुत आक्रोश होकर बहुत आंसर कर रहा था, और जो क्रिश्चियन था और उसके पॉइंट बहुत सॉलिड भी थे, मतलब इतना पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट का बोल रहा था, लेकिन मदन मोहन प्रभु बता तो रहे थे लेकिन देखने में से लग रहा था कि इतने अच्छे पॉइंट नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी होता ना जोर से कोई बात बोली जाती है तो उसका असर ज़्यादा बढ़ता है, तो लोग तालियां बजाते थे, जज ने जो मार्क्स भी दिए तो वो क्रिश्चियन को ही मार्क्स दिए, क्रिश्चियन जीता भी, लेकिन जजेस ने बाद में कहा, क्योंकि जज तो सारे क्रिश्चियन ही थे, जज ने लास्ट में कहा कि बोलते हम अगर जज नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सारे जज ने खड़े होके बोलते स्टैंडिंग बोलते हैं वो रेस्पेक्ट करना बोलते हैं उसको, स्टैंड खड़ा होगे तो खड़े होके अपने चेयर पर खड़े होके बोले कि जितने भी शास्त्रों के बारे में क्रिश्चियन ने कहा है वो सारे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर गुण है, वो ये सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान है इसका, पर जो गुण का आचरण है जो इनके अंदर है, तो ये इज ए लिविंग स्क्रिप्चर बोला गया, जैसे हम लोग बोलते हैं जीवंत भागवत, जैसे भागवतम ये हो गया, एक ग्रंथ भागवत है, एक होता है भक्त भागवत, तो बोलिए भक्त भागवत है। तो सारे जितने भी लोग वहाँ स्टेडियम में रुके हुए थे वो सारे लोग खड़े होकर उनको स्टैंड पोजीशन पर खड़े होकर सबको उन्होंने रेस्पेक्ट किया, क्या बोला कि हाँ हम भी इसी बात से सहमत हैं, है ना, तो कह रहे हैं कि मतलब दूसरों का हराना किससे, अपने आचरण से, शास्त्रों से, शास्त्रों की अच्छी बातें ढंग से प्रस्तुत करके, ऐसा नहीं एक हॉरर पकड़ लिया तो जानता है भगवान कौन है, भागवतम को जानते हो, ऐसा नहीं, ऐसे बताना अपनी विनम्रता के साथ कि वो आकर्षित हो जाए, क्योंकि देखिए हम लोग क्रोधित होकर शास्त्र को बताएंगे तो एक व्यक्ति शायद कृष्ण के पास आने से बच जाएगा और दूर चला जाएगा, लेकिन अच्छे ढंग से शास्त्रों को बताएंगे तो वो क्या होगा, बड़ा आपके भाषा से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से उसमें परिवर्तन आएगा और सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, तो यही तो जीत हमारी, हमें दूसरों का हराना नहीं है, दूसरे के दिलों को जीतना है, दोनों अंतर है। कभी कभी हम दूसरों को हरा देते हैं, वो हार के चले जाते हैं, हम बोलते देखा ऐसा बात बोला शास्त्रों से उसकी ऐसी कैसी होगी, है ना, अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। यही उद्देश्य प्रचार का, क्या उद्देश्य, हाँ वो उसकी हार क्या पता, कि वो भौतिक संसार को छोड़कर आध्यात्मिक संसार में आ जाए, लोगों को अगर मारना है तो अपनी अच्छाई से मारिए, बुराई से नहीं, इतना अच्छा बन जाइए कि झुक जाए आपके सामने, लेकिन हम क्या सोचते इतने बुरे बन जाए कि उसको झुका देंगे, वो समस्या ठीक है। तो निंदा निंदुक को कैसे, निंदा को निंदा कैसे की जाती है, निंदा को कैसे खत्म कर सकते हैं, ईर्ष्या व द्वेष को कैसे खत्म कर सकते हैं, प्रेम से, प्रेम से, अगर आप प्रेम करेंगे ना किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो कोई कितना भी निंदा करे आपको निंदा समझ में नहीं आएगी। और वैसे ही बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छे गुण है उनके अंदर, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं तो उनको बहुत सारे गुणों को जानता हूँ, मैं आप गुणों को बताता हूँ, तो व्यक्ति कभी आपके पास निंदा करने आएगा नहीं आएगा। और देखेगा ये व्यक्ति उसकी गुणगानी करता है, उसके पास जाता हूँ तो उसके उसके पास निंदा करने कैसे जाऊँ उसके बारे में। और विप्रलंबा भाव सब तथा कि विरह का मतलब क्या होता है, जब कभी मिलन हुआ हो है ना, कब किसी को याद करते हैं, किसके लिए तड़पते हैं, जब किसी से मिले हो है ना। जैसे गुलाब जामुन का विरह हो सकता है, मैं गुलाब जामुन खाया है, स्वाद का आभास चेतना में है, तब बोलेंगे आज सबको गुलाब जामुन मिलेगा गुरु पूजा के बाद, तो सबको विरह होता है गुलाब जामुन है ना, तो इसको बोलते हैं विरह है ना। नहीं हम तो कृष्ण से कभी ना कभी मिले हैं ना, नहीं मिले हो, रोज मिलते हो मंगल आरती में, साक्षात राधा रानी खड़ी अंदर देखो मिले, लेकिन प्रेम नहीं किया है, प्रेम करिए है ना। जैसे किसी कोई माता अपने माता पिता से बहुत प्रेम किया किसी ने और उसके सिर पर चोट लगी, याददाश्त लगी, उसकी माँ सामने आएगी तो प्रेम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि भूल गया है। जैसे याददाश्त वापस आई तो प्रेम तो वापस आ जाएगा, पर उसको अच्छा लगता है। जैसे किसी बच्चे की याददाश्त चली गई है और उसकी माँ जब उसके सर पर हाथ फेरती है तो उसको अच्छा लगता ही नहीं लगता है, उसको अच्छा लगता है पर उसको समझ नहीं आता कि ये मेरी माँ है, लेकिन प्रेम की भाषा तो सबको समझ आती है। तो क्या होता है वो, जैसे हम भी ये कृष्ण भावना भावित होते हैं, भक्त को समझ में आते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अच्छा लगता ही नहीं लगता है। तो यही तो लक्षण है कि हमें प्रेम है भगवान से, पर हम भूल गए, तो बार बार आएंगे तो याद आ जाएगा। तो द्वेष को कैसे खत्म कर सकते हैं प्रेम से, तो विप्रलंबा भाव जो है यही बताया गया है कि पहले कृष्ण से ये हुआ था। आपने प्रेम सरोवर कितने लोग हैं आप में से, प्रेम सरोवर नहीं है बरसाना के पास है, प्रेम सरोवर स्थान है, वहाँ पर राधा और कृष्ण दोनों बैठे हुए थे और मधुर लीलाएं चल रही थी और दूर में मधुमंगल थे, मधुमंगल के मित्र हैं, दूर खड़े थे। तो इतने में क्या हुआ कि एक भौरा उड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ कृष्ण के बीच में आया, तो इतने देर में मधुमंगल जोर से चिल्लाने लगे, ए मधुसूदन, उनको मधुसूदन भी कहा गया है, भौरे को मधुसूदन कहा जाता है, मधु मतलब शहद को, सूदन मतलब जो सूद करता है, खींचता है या लेता है, ग्रहण करता है। कभी कभी सूदन शब्द का मतलब ग्रहण भी करना और मारना भी होता है। मधु नामक राक्षस को मारा कृष्ण ने, इसलिए कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है ना। लेकिन मधुसूदन का एक और मतलब होता है भौरा। तो बोले ए मधुसूदन चल हटो यहाँ से जाओ, ऐसे किसने कहा, मधुमंगल ने कहा या उनके सिखाने कहा। तो इससे क्या हुआ, वो भौरा चला गया। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ मधुसूदन चले गए। तो राधा रानी सामने बैठी है, पर राधा रानी को क्या लगा कि कृष्ण चले गए, सामने बैठे हुए हैं, तो जैसे एक हल्का सा आभास हुआ कि कृष्ण चले गए तो आंखों से आंसू आने लगे और बेचैनी सी हो गई और ऐसा लग रहा था कि प्रेम में वृद्धि हो गई। कृष्ण को बड़ा आनंद आया इससे कि मेरे प्रेम में इतनी पागल है, अच्छा आनंद लगने लगा। ऐसे कभी माँ को लगता ना, माँ क्या करती, दीवार के पीछे छुप जाती और क्या बोलती है कि माँ नहीं है, ऐसे बोलती उसी को। तो बच्चों को आवाज सुनने के बाद समझना चाहिए कि माँ तो यही है, लेकिन बच्चे पूछता है माँ नहीं है, या कभी माँ बेहोश आने का एक्टिंग करती। जैसे चैतन्य महाप्रभु के क्या हुआ था कि उनकी माता को नारियल फेंका था, सिर पर लग गया, तो माता ने बेहोशी होने का एक्टिंग किया, बेहोश हो गए करके। तो चैतन्य महाप्रभु को बोले कि जाओ और नारियल लेकर आ, छोटे थे चल नहीं पाते ठीक से, नारियल लेकर आओगे तो माँ ठीक हो जाएंगी, जिंदी होगी, मर गई हैं। तो छोटे से तो बड़े, छोटे से दो नारियल लेकर आए और माँ को पिला रहे थे, माँ फिर होश मारी। तो इसे माँ को अच्छा लगता है। वैसे कृष्ण को जब देखते हैं कि भक्त जो है तड़प रहे हैं मेरे प्रेम में, तो कृष्ण को अच्छा लगता है। यह है विप्रलंबा भाव, है ना। इसलिए हम वृंदावन जाएंगे नहीं, गुप्त वृंदावन जाएंगे नहीं, जयपुर जाएंगे नहीं, मायापुर जाएंगे नहीं, तो विरह कैसे होगा, किससे होगा? हाँ, जिससे हम जुड़े रहेंगे, जिसके पास आते रहेंगे, जिससे मिलते रहेंगे, उसी से ही विरह होगा। या तो दुकान से होगा, या मकान से होगा, या पैसे से होगा। जैसे वृंदावन जाते हैं हम लोग, दिल्ली से विरह होने लगते हैं, है ना। कब जाएंगे दिल्ली, कब खाएंगे परोठे? वृंदावन बार बार जाएंगे, बार बार जाएंगे, वृंदावन का दर्शन करेंगे तो विरह होगा। जैसे एक किसी महीने में अगर कृष्ण भगवान पर वृंदावन नहीं जाते, तुमको कैसे लगता होगा? अजीब सा लगता होगा। रोज आप जप करते हैं, किसी दिन जप नहीं करते हैं तो कैसे लगता है, है ना। रोज मंगल आरती अगर कोई व्यक्ति आता है, एक दिन नहीं आता तो कैसे लगता है, है ना। जो कभी नहीं आता उसको तो यहाँ पर आने पर घर की याद आएगी। काश मैं घर पे होता, एसी में एसी वाली रजाई ओढ़ के सोता। एसी वाली रजाई भी आती ना उसमें, है कि नहीं। तो आप जिसका मिलन करेंगे उसी से विरह होगा। मिलन करने के बाद जो विरह होता है, और विरह में जो स्मरण होता है, उसको विप्रलंबा भाव कहा गया, ठीक है। और
जड़े हैं वो माधवेंद्रपुरी है, तना है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, और जो उनकी टहनियाँ हैं वो अद्वैत आश्रम
शाखाएँ हैं,
उसके जो शूट्स जो हैं वो श्री प्रभुपाद और उनके जैसे श्री प्रभुपाद
अन्य शाखाएँ जो छोटी शाखाएँ हैं,
और फूल पत्तियाँ जो हैं, पत्तियाँ जो हैं वो श्री प्रभुपाद के शिष्य जो फूल हैं।
फूल कभी भी झड़ सकते हैं। तो फूल का कर्तव्य क्या है? पत्तियों से टहनियों से जुड़े रहे। और टहनियों का कर्तव्य है शाखाओं से जुड़ा रहे। शाखाओं का कर्तव्य है तने से जुड़ा रहे। तने का कर्तव्य है जड़ से जुड़ा रहे। तो सब अपना अपना कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। तो हमारे ऊपर के तो सब टहनियाँ पत्तियाँ तो सब कर ही रहे हैं, फूल को भी करना पड़ेगा, नहीं तो फूल मुरझा कर सूख कर गिर जाएगा। और इस बार पिछली बार जो हुआ था हाँ, और पूरा एटमॉस्फेयर कचरा हो जाएगा, है ना। आप पान खाते हो, थूक देते हो, बोले आप भी खाइए पान, रोज उसको खाओ भी थूकेगा। सभी कमरे में पान खा रहे हैं, सब थूक ही रहे हैं, सोच लो कैसे लगेगा। यही है निंदा। और हम सब कौन है? डिवोटी सी है हम सब, है ना। कोई ना कोई डिवोटी ए, कोई ना कोई डिवोटी बी हमारे पास आता है, क्या करने के लिए? निंदा करने के लिए। तो हमारा कर्तव्य क्या है? उसके निंदा पत्र में सिग्नेचर कर दो, याद है मैंने बताया था। कोई व्यक्ति ने सुसाइड नोट लिखा है कि मैं होशो हवास में ये वचन देता हूँ कि मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ, उसमें किसी का दोष नहीं है और मुझे किसी से कोई दुखी दुख नहीं था, इसलिए इसका आरोप किसी पर नहीं लगाया जाए, हरे कृष्णा। और आपके पास लिख रहा था कोई लेटर, आप उसमें सिग्नेचर कर देते हो अपना नाम लिखकर, तो किसका सुसाइड नोट हो गया? जिसने सिग्नेचर किया है, है ना। तो वैसे कोई निंदा करता है, अरे प्रभु जी वो तो ऐसी हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, और वो हाँ हाँ ऐसी हैं, हमने बोल दी बस, आप निंदक के बराबर हैं। ये चुपचाप सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बोलते रहिए, निंदा रस में बड़ा आनंद है। तो भी आप निंदुक के बराबर हैं, चुप नहीं रहना है। मौनम सुकृति लक्षणम, मौन रहने का मतलब क्या है? हाँ बोल रहे हैं, सुकृति कर रहे हैं। इसलिए खंडन करना चाहिए, या तो शास्त्रों से खंडन करो, स्थान छोड़ दो, या उनकी निंदा के बजाय उनकी तारीफ करो, तब तो फायदा है, अदरवाइज तो फिर फंस जाएंगे हम। चैतन्य महापुरुष से एक ब्राह्मण मिलते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, वो आकर रोने लगते हैं, बोलते चैतन्य महापुरुष मैंने बहुत निंदा की है, मैं ब्राह्मण हूँ फिर भी कितनी निंदा की इन सब ब्राह्मणों का, अन्य ब्राह्मणों का, लोगों का, अब मैं क्या करूँ, कैसे बचो इस निंदा के विष को मैंने पान किया है। मतलब जिस मुख से तुमने निंदा का पान किया है उसी मुख से क्या कीजिए, अमृत का पान कीजिए। वो अमृत क्या है, लोगों का गुणगान, उसी व्यक्ति का गुणगान कीजिए जिसकी निंदा की है, तब शायद आप बच सकते हो। और उसी मुख से हरिनाम लीजिए। तो दो तरीका है, आपने निंदा का कर दिया है तो बचने का तरीका क्या, उसी व्यक्ति का गुणगान और हरिनाम का उच्चारण और पश्चाताप की भावना। जब आप किसी की निंदा द्वेष ईर्ष्या करते हैं, अपराध करते हैं, तो पहला कर्तव्य क्या है, उनके चरणों में जाकर क्षमा मांगना। बहुत कठिन काम है, क्षमा मांगना। क्षमा मांगने से ही बच पाएंगे, लेकिन और कोई तरीका नहीं। वैसे तो अगर आप डायरेक्ट क्षमा नहीं मांग सकते, अभी हमारे अंदर अहंकार है, तो अलग तरीके अपनाना चाहिए। और आजकल माया द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई है, SMS कीजिए, ईमेल लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, और लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, है ना। तो तरीका, या सेवा कीजिए पीछे से, कभी कभी सामने की सेवा होती है, प्रसाद खिलाइए, गिफ्ट दीजिए, है ना, या उनके पीछे कुछ कार्य कर दीजिए उनका। कभी कभी किसी की भक्त की सेवाएं होती पीछे, वो कर दीजिए, है ना। कभी कभी वो लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से उनके लिए कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो भगवान, लेकिन उनके साथ अच्छा हो। तो ये पश्चाताप करना जरूरी है, अन्यथा नहीं होगा। निंदा के लिए, निंदा का बचने का तरीका क्या है, गुणगान। हाँ, गुणगान करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गुणगान कब होता है, मैं हर बार बताता हूँ, कब कर सकते हैं गुणगान, गुण देखेंगे, गुण देखते नहीं है। जब भी क्लास में बोला जाता है कि गुणगान कीजिए, तो कोई घिसे पीटे हमारे पुराने वर्ड्स होते हैं गुणगान के। ऐसा नहीं कि लोग नया काम नहीं कर रहे हैं, नया काम अच्छा कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, देखते नहीं है करते हो। निंदक, हम निंदुक है, इसकी बात चर्चा चल रही है। अभी बात चल रही है कि हम निंदुक है, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है हम निंदुक है, और आप जो श्लोक बता रहे हो उसमें है कि सामने वाला निंदुक है। दोनों अंतर है। सामने वाला निंदुक तो अच्छी बात है, आपकी उंगलियां देखेगा तो आप में सुधार होगा। आपकी कोई निंदा करता है, अरे आप तो ऐसे हो वैसे हो, यस प्रभु जी मैं तो बहुत ही गिरा हूँ, दिस इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। मैंने स्टोरी बताया थी ना उसकी, व्यक्ति बोलते संसार में सबसे गिरा हो निकृष्ट व्यक्ति को लेकर आओ, तो मल को लेने गया, मल को छूना गया तो क्या आवाज आई, सावधान छूना नहीं मुझे, मैं तो काजू किसमिस था, तूने खा के मेरी हालत की है, मल बना दिया। कीड़े को छूता है, कीड़ा मल खा रहा है, सबसे घटिया व्यक्ति है, बोले इसे भी मत छूना, ये मुझे खाकर क्या बना रहा है, खाद बना रहा है, पवित्र कर रहा है, तू उससे भी गर्भित है, तो उसको लगता है यार मैं मल से भी गर्भित हूँ। तो अपने आप को विनम्र रखेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक मठ के पास एक व्यक्ति रहता था, हमेशा निंदा करता था। तो जब उसका देहांत हो गया तो मठ में बहुत उत्सव मना रहे थे, लोग डांस कर रहे हैं कि मर गया अच्छा हुआ निंदा करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि मेरा मित्र मर गया, जो मुझे बताता था मेरे अंदर कमियां क्या है। तो निंदा करने, हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, दैट इज गुड, ये गुड मान के चलना चाहिए, पर हम खुद निंदा कर रहे हैं तो ये बैड। दोनों अंतर है, ठीक है। और चलिए आज की चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों का विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म जो 4 प्रतीक विष्णु चार हाथों में धारण करते हैं और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं उन्हें जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति में जगत शुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। उनकी इस बताया पद्म पुराण में। इसी प्रकार स्कंद पुराण में भी आता है कथन, जो बताया जाता है जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी या रज धारण करते हैं, जो अपने शरीर पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, जिनके पास उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं जो पापी पुरुषों को दंड देते हैं, जो वैष्णव उन्हें यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवतम में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वैष्णव के पास ना जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र के परे हैं। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है जिस व्यक्ति के शरीर में चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है वो सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। तो उसे बताया जा रहा है पद्म पुराण में वैष्णव तिलक शरीर में धारण करना चाहिए। तिलक लगाते हैं, इस तिलक का क्या फायदा है बताया जाता है, जो तिलक धारण करते हैं तो शरीर विष्णु मंदिर बन जाता है। तो ये तिलक पर डिजाइन का बताया गया उर्ध्व पुंड, क्या बताया गया है उर्ध्व पुंड, पुंड का मतलब लकीर होता है, उर्ध्व का मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की लकीर है और नीचे की ओर ऐसा चिन्ह है तुलसी का, ऐसा लगता है भगवान के दो चरण हैं और उनके चरणों में तुलसी का अर्पण किया गया। और स्थान को बताया जाता है जो दाहिना हाथ है ये शिव जी का है, बायां हाथ है ब्रह्मा जी का है, खाली स्थान ठीक है तिलक का, और बीच का खाली स्थान विष्णु का ठीक है, और भगवान के चरण जैसे बताया गया है। पर जो तुलसी का जो नीचे पत्ता जो जैसा बना रहता है ये तुलसी के पत्ते का शेप नहीं होता है, ऐसा आकार नहीं होता है, ये आकार होता है या तो शुगर के लीफ जो गन्ने का होता है ना गन्ना, उसके जो पत्ता होता है उसका नुकीला कैसे होता है आगे का अग्रभाग वैसा कभी कभी शेप बनाते हैं नुकीला होता है, या पीपल के पत्ते के समान गोल सा बना रहता है, जैसे पीपल का पत्ता गोल और नुकीला होता है वैसा, या कमल की पंखुड़ियाँ कैसे होती हैं वैसा शेप बनता है, ये तीन शेप बनाए जाते हैं इसको। तो ये तुलसी के शेप का नहीं है पर तुलसी जैसा माना जाता है हाँ उनके चरणों में। तो ये जो धारण करता है अपने शरीर पर 12 तिलक होते हैं, तो बता सकता 12 तिलक कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कौन बताएगा तो बताए कृष्ण भगवान को बताएंगे शुरू से बताइए जल्दी जल्दी थोड़ा लेट हो गया और कौन बताएगा केशवाय नमः गोविंदाय नमः पहले नहीं आता माधवाय नमः पीछे वक्षस्थल पर माधव है माधवाय नमः कौन बताया बिल्ली ठीक है याद मत दिलाइए वेरी गुड वेरी गुड। जो तिलक रोज लगाते हैं उन्हीं को याद होता है, जो 12 तिलक रोज लगाएंगे ना उन्हीं को याद भी होगा, सीधी सी बात अब बोल के लगाते हो तो, और सीक्वेंस होता है ना, पहले यहाँ गोविंदाय नमः उसके बाद नारायण नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः केशवाय नमः सॉरी तो केशवाय नमः पहले होना चाहिए है ना, सीक्वेंस है उसका, बिना सीक्वेंस के करेंगे तो याद नहीं रहेगा ठीक है। तिलक लगाने की विधि जो है वो वैष्णव सदाचार ग्रंथ में दिया हुआ है, उसमें देखिए शरीर पर चिन्ह पर लगाइए। तो इसको लगाने से क्या होता है हमारा शरीर मंदिर के विष्णु मंदिर के समान हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कलयुग में बताते हैं स्वर्ण महंगा होगा, स्वर्ण महंगा होगा तो लोग तिलक धारण करेंगे, वही सही आभूषण, ये आभूषण है वैष्णव का तिलक लगाना। तो तिलक नहीं लगाना, बिना तिलक के जो चेहरा होता है उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं शमशान भूमि के समान है। कैसा है? शमशान भूमि लेकिन मत घूमिए, सबके साथ घूमो शमशान भूमि। देख लो, आओ चिता जला लो अपने यहाँ पर। तो तिलक लगाना चाहिए, एटलीस्ट जो भक्त यहाँ पर रेगुलर आते हैं उनको लगाना चाहिए, है ना? अगर कोई एलर्जी ना हो तो स्किन एलर्जी, तिलक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगाने में दिक्कत आती है तो आप किसी चीज़ से स्टिक से लगा सकते हैं, अगर ऐसा दिक्कत है। कई लोग होता है कि हम इतना अच्छे से नहीं लगा सकते, कई लोग विश्वास भी नहीं होता कि इतना प्लेन कैसे लगाते हैं आप लोग हाथ से बिना किसी, ऐसा सोचते हैं लोग। कोई बात नहीं, स्टिक से लगाइए। एक ब्रह्मचारी उनके हाथ में इतनी कला नहीं है, आदत भी नहीं है उतनी, वो क्या करते हैं सिम कार्ड आता ना, सिम कार्ड उसे लगाते हैं। इट्स ओके, लगाते तो हैं, नहीं लगाने से करोड़ गुना अच्छा है, है ना? कई लोग तिलक लगाए, जैसे प्रभु जी तिलक लगाए, उतना अच्छा शेप नहीं है, लेकिन उनसे बहुत करोड़ गुना अच्छा है जिन्होंने लगाया। इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान देखिए, हम यमदूत नहीं आएंगे देखने के लिए कि डिजाइन ठीक नहीं, इसको ले चलो। यमदूत आएंगे, लगाया नहीं, ले चलो, है ना? तो तिलक लगाना बहुत जरूरी है रोज। जहाँ किसी को ऑफिस में मनाही है, रोक टोक होता है, उसको बस तिलक नहीं लगाना। से क्यों? क्योंकि झगड़ा होगा ऑफिस में, नौकरी निकल जाएगी तिलक के चक्कर में, उसको पानी का तिलक लगाना चाहिए ये वाला बस। बाकी शरीर सब तो लगा सकते हैं, नहीं? कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि तिलक लगाना मना है, तो यहाँ मना है ना आपका ऑफिस में, आपका बॉस यहाँ तिलक लगाने मना करे, गोविंदा केशवाय नमः वाला, लेकिन बाकी 12 शरीर में जो बाकी स्थानों में वो तो दिखता नहीं है ना, कपड़े ढक लेते हैं, वो तो लगा ही सकते हैं, नहीं? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, चलाकी दिखाते हैं। यहाँ भी भक्त लोग पानी का तिलक लगाते हैं, हम जब ऑफिस जाते हैं तो पानी का तिलक लगा के जाते हैं। एक बार मैं नॉर्मल तिलक लगा के गया था ऑफिस जाते समय, पानी से धोकर वापस तिलक, पानी का तिलक लगाता था, तो एक बार भूल गया लगाना, मतलब बिठाना भूल गया, ऑफिस में चला गया। तो हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है, सारे जितने भी मैनेजर्स हैं सबको खड़ा होना पड़ता है लाइन में, और जो MD है उसके साथ मीटिंग होती है रोज सुबह 5 मिनट का, 2 मिनट का, ऐसा होता है आज क्या प्लानिंग है, क्या करने वाला, क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट थे। तो मुझे बार बार देखे जा रहा है MD, वो देखे जा रहा है चेहरे को किसने क्या लगाया। तो गोपेश्वर ने मना किया था, आप मन लगाओ, नहीं तो सोचेंगे सारे भक्त एक ही डिपार्टमेंट घुस गए, या फिर मैं प्रचार करके भक्त बना दिया, तो दोनों ठीक नहीं है। तो मैं गलती से पहन के चला गया था तिलक लगा, तो मेरे बगल वाले बंदे ने बोला कि देखो टीका कहाँ से लगाया, जल्दी मिटाओ, MD देख रहा है। फिर मैंने जल्दी मिटाया। तो कभी कभी ऐसा अवॉइड करना पड़ता है, तो सिर्फ माथे के लिए कीजिए, बाकी शरीर पर लगा के जाइए, नहीं? लेकिन वो क्या सोचते हैं, नहीं माथे पर नहीं लगाना तो शरीर पर क्या लगाना। हो सकता है यमदूत आ जाएंगे तो कपड़ा फाड़ देना, देखो तिलक लगाया हूँ, है ना? तिलक वाला नहीं लगा, कम तिलक तो लगा इसका। हाँ, सबके नाम भगवान के नाम है ना, सबके वैल्यू। अगर दुकान में इतनी दिक्कत है तो पूरे शरीर में तो जरूर लगाइए, आपके मन मोटे वाले प्रश्न का उत्तर। एटलीस्ट माथे पे तिलक होना चाहिए, अगर माथे पे तिलक लगाने का दिक्कत है तो पूरे शरीर में लगाइए। फिर कुछ क्या खर्चा होता है, ये आप बोलिए पत्थर, इतना बड़ा बड़ा पत्थर ले आऊंगा आपके लिए, जो तिलक इतने बड़े पत्थर होते हैं, इतने बड़े जो मंदिर में मिलते हैं, आप उसको तोड़ तोड़ के, एक बार पत्थर लाते हैं, पिछले 5 साल पहले लाया था मैंने पत्थर, अभी तक चल रहा है, आपके लिए ले आएंगे, ऐसे लगाते रहिए, घिसते रहिए, मुफ्त का चंदन घिस भाई नंदन, घिसते रहना, लगाते रहना, लगाइए तिलक, क्या दिख रहे थे तिलक लगाने में, कोई तकलीफ है मुझे समझ नहीं आज तक। और दूसरी बात, चलिए मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से आने के बाद क्या लगाते हैं आप, प्रश्न यही है। ऑफिस आइए, स्नान कीजिए, तिलक लगा लीजिए, पूरा तिलक, मतलब एक एटलीस्ट एक तिलक लगाइए, पता है इससे क्या फायदा होगा, कितने लोगों को स्मरण करा सकते हैं भगवान के बारे में, जो देखेगा अरे हरे कृष्णा वाला जा रहा है, वैष्णव है। हम अभी ट्रेन से आ रहे थे जब जयपुर से गरीब रथ में, तो काफी लोग बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे तो मेरे को बोलता आप वैष्णव है, तो बोला हाँ प्रयास कर रहे हैं वैष्णव बने का, नहीं आप तिलक लगाया ना, कृष्ण का तिलक है, स्मरण कर रहा है कृष्ण का, है ना। ऐसे होता है, हम सड़क से जब जाते गुजरते हैं वेशभूषा पहन के तिलक लगा के, तो कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो घबराता है देखकर कि भग जा रहा है रुक जाओ, है ना, सोचते हैं लोग, तो उसके स्मरण तो आता ना कि भक्त है भगवान है सब सोचता है, तो हमारा ही फायदा नहीं है दूसरे का फायदा होगा। ये प्रकार का ये ना पुलिस के ड्रेस के समान है, पुलिस का ड्रेस पहनते तो क्या होता है आसपास के लोग डरते हैं चोर, और हम भी डरते हैं कि हमें चोरी नहीं करना, हमें गलत नहीं करना, पुलिस पुलिस हूँ मैंने ड्रेस पहन रखा है। जैसे किसी ने वीडियो भेजा था जिसमें एक पुलिस बहुत शराब पिया हुआ, यूपी का कोई था वीडियो, और वो इतना शराब पिया हुआ कि वो जहाँ टॉयलेट करते ना मल त्यागते वहाँ गिरा हुआ है, मतलब पेशाब घर के पास गिरा हुआ है, उसका वीडियो लेके किसी ने भेज दिया ये यूपी की पुलिस। लेकिन अगर वो पुलिस का ड्रेस नहीं पहना हो तो कोई वीडियो बनाता नहीं, बनाता तो वो सतर्क हो जाता है व्यक्ति। वैसे हम तिलक लगाए तो हम सतर्क हो जाए, तिलक लगाया है। मेरे जीजा जी एक बार नए नए जब भक्त बने थे तब हम तो उस समय भक्ति बने थे, तो उनकी मूवी देखने की काफ़ी इच्छा थी होती थी, और वो मुझे भी ले आते थे पकड़ कर, तो बोले चलो मूवी देखने चलते हैं, मुझसे कहा तो बोले ठीक है। मैंने बोला आपका तिलक लगाया हुआ है, उन्होंने कोई बात नहीं तिलक मिटा देते हैं, तो तिलक मिटा दिए, अब तिलक मिटाया और मूवी देखने गया तो वो गंदी मूवी लगी थी वहाँ पर, तब बोले कि आज भगवान ने सबक दे दिया कि आज से मूवी नहीं देखूंगा, मैं तिलक मिटा के मूवी देखने की इतनी इच्छा थी मैं तिलक मिटा के गया था, तो उन्होंने उसी दिन से मूवी देखना छोड़ दिया। ये बहुत पुरानी बात 92 या 93 की बात है। तो कहने का मतलब है अगर आप तिलक लगाते हैं तो आप खुद ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि मुझे गलत नहीं करना, अब तिलक नहीं लगाते हैं तो भाई छूट है, आप कुछ भी करिए, है ना। मान लीजिए आपको सब्जी की दुकान में टमाटर चोरी करना है, तिलक लगा छू देखना तिलक लगाया नहीं चोरी नहीं करना है, लेकिन अगर तिलक नहीं लगाया तो चोरी कर जाएंगे। तो अपने आप को भी एक बाउंड एक रेखा के अंदर रखना, अच्छी अच्छा भक्त बनने की रेखा के अंदर रखना भी तरीका, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। और ऐसा तिलक होता है उसको क्या कहते हैं, त्रिपुंड्र, तीन रेखाएँ होती हैं त्रिपुंड्र, तीन रेखाएँ कौन लगाते हैं, मायावादी लगाते हैं। तो उसके पहले भी पीछे भी स्टोरी है, एक बार देवासुर संग्राम हुआ तो असुर भी जो है भगवान को मानते हैं और देवता भी मानते हैं, वो मानते हैं कि सुप्रीम है, पर असुरों का ये रहता है कि जब उनकी अहंकार या इंद्रदित्त की जो बाधा आती है तो भगवान से भी लड़ जाते हैं, ये असुर और देवता में अंतर है। देवता इंद्रदित्त करते हैं तो इंद्रदित्त में भगवान बाधा आती है तो भगवान से नहीं लड़ते हैं, भगवान से याचना करते हैं दे दो, असुर क्या भगवान से लड़ जाते हैं। जैसे कि उसमें बताया गया सात स्कंद में बताया गया है हिरण्यकश्यप क्या बोल रहे हैं, वैसे मैं जानता हूँ कि भगवान जो सबके स्वामी हैं हमें हम सबका जीवन देने वाले हैं, ये कश्यप मुनि से तो पैदा हुए हैं, और कश्यप मुनि ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी किससे पैदा हुए हैं, विष्णु की नाभि से, ये सब तो असुरों को पता है। लेकिन बोलते हैं कि इन देवताओं की चापलूसी बातों में आकर विष्णु ने क्या किया, मेरे भाई को मार डाला तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो बुद्धि इस प्रकार की रहती है। तो उस समय लोग ना तिलक ऐसे ही लगाते थे जैसे हम लगाते हैं, विष्णु तिलक ही लगाते थे, सब विष्णु के उपासक ही थे, सब विष्णु को मानते थे। तो देवासुर संग्राम हुआ था, देवता हारने लगे, तो देवता हारने लगे तो सब लोग देवता आए भगवान के पास, भगवान त्राहिमान त्राहिमान रक्षा कीजिए, बोलते कुछ भाई मैं चक्र भेजता हूँ अपना, चक्र जाते मारने के लिए, वहाँ जा कन्फ्यूज हो जाता मारूँ किसको, सारे वैष्णव तिलक, सारे वैष्णव हैं तिलक लगाए, वैष्णव तिलक सारे वैष्णव हैं, तो आ जाते हैं तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। सुदर्शन जी बोलते हैं भगवान को मैं कुछ कर नहीं पाया, बोले क्यों, बोले कि जितने भी ये लोग हैं ये लोग शिव जी की पूजा भी करते हैं और शिव जी तो वैष्णव हैं और शिव जी लगाते हैं तिलक, ऐसा जैसे उर्दू कुंड लगाते हैं, वैष्णव तो तिलक ऐसे लगाएंगे ना, और शिव जी को क्या गया वैष्णव नाम यथाशंभु, वैष्णव में सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव कौन है, शिव जी, और शिव जी तिलक ऐसे लगाए हैं तो उनके भी उपासक वो भी ऐसे लगा रहे हैं, तो मैं किसको मारूं, चक्र बोलता है तो गलत गड़बड़ हो गया, शत्रु है फिर मार नहीं सकता, क्योंकि जो तिलक विष्णु तिलक लगाता है उसको चक्र मार नहीं सकता, क्या किया जाए। तो बोलते ठीक है मैं शिव जी से बात करता हूँ। तो शिव जी के साथ मीटिंग हुई वेडनेसडे को सुबह आश्रय प्रोग्राम को कैंसिल करके। तो लोग आए विष्णु से बात हुई, बोली आपका तिलक डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, जो उर्दू पुण लगाए तो त्रिपुण लगाओ, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि चक्र मारना जाए तो चुन चुन के मार सके। बोले इतनी छोटी सी बात है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये भी तिलक लगाऊंगा। वैष्णव हो के भी शिवजी त्रिपुण लगाते हैं, ये रीजन है ताकि असुर ऐसी लगाए, असुर और जो होते हैं ऐसे तिलक लगाते हैं। तो लगाए तिलक तो चक्र जाके सारे असुरों को मार डाला। तो इसलिए कोई प्रश्न पूछे कि शिव जी ऐसा तिलक क्यों लगाते हैं त्रिपुंड, तो आप बता सकते हो उसका रीजन क्या है। रेफरेंस नहीं है, मैंने भी सुना है आचार्यों से, प्रभुपाद जी ने कहीं मेंशन किया है। वो हो सकता है किसी विष्णु पुराण से हो, पर लेक्चर में बोला नहीं गया तो कभी कोई बोलता नहीं है। पद्म पुराण या विष्णु पुराण में कहीं ना होना चाहिए, ठीक है। वो लॉजिक फिट भी बैठता है, एक तरह वैष्णव बोल रहे हैं तो सब तिलक लगाए हैं, है ना, तो लॉजिक बनता भी है। एनीवे तो बताया गया। और कई लोग क्या करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म का भी चिन्ह अर्पित करते हैं, टैटू नहीं बनाना है, कई लोग टैटू बनाते हैं, है ना, शरीर में शंख का टैटू बना दिए, चक्र बना दिए, गदा पद्म बना दिए। तो इसे मतलब ठीक है, टैटू बनाना ठीक भी चलेगा, लेकिन पुराने जमाने लोग चिन्ह बनाते तिलक से बनाते, तिलक से लकड़ी लेके बनाते थे चिन्ह, वो बनाना चाहिए, यहाँ पर बताया गया। और बताते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे तिलक धारण करता है, विष्णु तिलक धारण करता है, उसकी उपस्थिति से वातावरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि हम तिलक सिर्फ मिट्टी करके लगा नहीं लेते हैं, क्या करते हैं उसके साथ मंत्र बोलते हैं, है ना, ओम ऋषिकेशाय नमः, जब बोलते हैं तो ऋषिकेश यहाँ पर प्रकट हो जाता है, श्रीधराय नमः, वामनाय नमः, सब वहाँ पर प्रकट हो जाता है, इसलिए मंदिर बन जाता है। तो उसकी उपस्थिति में इतने सारे मंत्र आपने बोले हैं, उसकी उपस्थिति में क्या होगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, जगत शुद्ध हो जाएगा, बोल रहे हैं। और स्थान को वैकुंठ बना देते हैं। और बताया गया कि ये जो मिट्टी है वृंदावन में मिलती है और द्वारका में मिलती है, जो गोपियां विरह में रोती थी तो उनके आंसू जो गिरते थे वो स्थान जो है वो मिट्टी जो पीले कलर की हो जाती है, उसी को ही वैष्णव तिलक कहा जाता है, उस मिट्टी को, और कोई तिलक नहीं है। इसलिए तिलक को पवित्र बताया गया है, और तिलक को बाथरूम में नहीं ले जाना चाहिए, टॉयलेट में नहीं ले जाना चाहिए। आप नहाते समय आपका तिलक चले जाता तो उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन बताया जाता है कि टॉयलेट में जाकर या बाथरूम में जाकर तिलक नहीं लगाना चाहिए, कमरे में बाहर आईना होना चाहिए, पानी है, तिलक सब कुछ बाहर होना चाहिए, वो तरीका अच्छा, स्वच्छ कपड़े से पोंछना चाहिए, तो बचे हुए तिलक को लगाना चाहिए, अपना हाथ लगा के लगना चाहिए। कई वक्त क्या करते हैं, ज़्यादा तिलक हो गया तो शरीर लगा लेते हैं, फेंकने से तो अच्छा है, तिलक पवित्र करता है शरीर, ठीक है। और कंठी माला जो तुलसी की कंठी माला है इसको धारण करना चाहिए, है ना, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, एक या दो राउंड जो होता है वो अदीक्षित, जो दीक्षित नहीं है उनके लिए होता है, और दीक्षित लोगों के लिए तीन होता है। दीक्षित लोग तीन इसलिए होता है, जैसे स्त्रियां विवाह के बाद सिंदूर धारण करती हैं, लाल झंडा, किस लिए, पता चल रहा है कि विवाहित है, है ना, तो उस हिसाब से बात करेंगे उससे। जैसे कोई विवाहित स्त्री से बात करने का रहता है तो बात कर सकता है आसानी से, और विवाहित स्त्री से बात करने में उसको शर्म महसूस करना चाहिए, और स्त्री को भी शर्म महसूस करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें बताई गई। तो वैसे ही कंटी माला का मतलब है, तीन राउंड का मतलब है, ये दीक्षित है ना, तो दीक्षित से अलग व्यवहार करेंगे, अलग सम्मान देंगे, और दीक्षित वाले को अलग सम्मान होता है ना। तो जो दीक्षित नहीं है उसको कम से कम एक राउंड का या दो राउंड का गले में पहनना चाहिए। तुलसी पहनने से जो भी अंदर जाता है वो शुद्ध हो जाता है, जो बाहर आता है वो भी शुद्ध हो जाता है, बाहर वाणी आती है, अंदर भोजन जाता है, शुद्ध हो जाता है। तुलसी कंठी माला कितना महत्व है। और उसको बताया जैसे कुत्ते के पट्टे के समान, कुत्ते का पट्टा गले में लगा रहता है, पट्टा तो क्या बोलते हैं, इसका कोई मालिक है, पालतू है, इसका कोई मालिक है, है ना, कोई पट्टा लगा हुआ है कुत्ते को आप डांट नहीं सकते, बोले इसका मालिक देख रहा होगा चिल्लाएगा, तो वैसे ही जब हम लोग गले में तुलसी धारण करते हैं तो लावारिस नहीं है, अनाथ नहीं है, सनाथ है, हमारा कोई मालिक है, हमने सरेंडर किया भगवान को, गुरु को। तो कंठी माला पहनने के लिए बताते हैं कोई व्यक्ति छू नहीं सकता, यमदूत तो छू नहीं सकते, चार मील तक यमदूत नहीं आते उसके पास। जो व्यक्ति बैठा है उसे चार मील सर्कल पर, उस सर्कल के अंदर यमदूत नहीं आते हैं। और ऐसी तुलसी की घटना है, दो घटना है, एक कल्याण नामक मैगजीन में आया था स्टोरी तुलसी के बारे में। दो मित्र थे, एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, पंडित था, पूजा पाठ करता था मंदिर में, तो अच्छा पुण्य व्यक्ति था, भक्ति के भक्ति तो नहीं था ऐसे नॉर्मल, तो वो पूजा पाठ करते हुए शरीर त्याग दिया। वो दोनों सुबह मुस्लिम और दोनों मित्र थे, तो दोनों सुबह शौच के लिए एक साथ ही जाते थे, गांव में होता है ना मित्र एक साथ जाते हैं, कितने भी जोर से प्रेशर लगा हो जाएंगे साथ में, मित्रता नहीं बात है, तो साथ में जाते थे। मुसलमान था लेकिन ये पंडित जी थे, फिर भी अच्छा मित्रता थी। तो पंडित जी की मृत्यु हो जाती है, चिता जला जाती है, लेकिन मुस्लिम आता भी है चिता जलने में, एक मित्र रहता है। तो मृत्यु हो जाने के बाद दूसरे दिन फिर वो बड़ा उदास रहता है, जो सुबह सुबह शौच क्रिया के लिए जाता है, कि मेरा मित्र के साथ ज़्यादा था, उसकी याद आती रहती। तो कुछ दूर ज़्यादा देखता है उसका मित्र, वो बहुत अच्छा ड्रेस पहना, राजा के जैसा ड्रेस पहना, बोले तुम यहाँ कैसे? तो बोलते मैं देखा तुम तो मर गए थे। बोला हाँ हाँ मैं मर गया था और मेरी चिता को जलाया गया, फिर मैं अच्छे कर्म किए थे तो मुझे, मतलब इतने अच्छे कर्म नहीं किए थे लेकिन फिर भी अच्छे कर्म किए थे तो मुझे यमदूत बनाया गया, मेरी सेवा है यहाँ पर जो पापी लोगों को पढ़ ले जाने के लिए। तो बोले ये मैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये बात, मुसलमान को विश्वास ही नहीं हो रहा है, सब कहानियाँ किताबों में होती है। बोलते नहीं है, सेवा के लिए आया हूँ मैं, आज एक लड़का है, एक बच्चा है जो थोड़ा बस रेंगते हुए चलता है, उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका टाइम पूरा हो गया और एक बैल आकर उसको मारेगा। बैल क्या करेगा, अपने सींग से उठाकर हवा में फेंकेगा और हवा से बच्चा गिरेगा, सिर के बल सिर फट जाएगा और मर जाएगा वहीं पर, और तब उसकी आत्मा को मैं ले जाऊंगा। तो बोलते ये सब बात बता रहे हैं, दुर्गा जी का मंदिर यहाँ पर वहीं पर हुआ। बोल ठीक है चलो देखते हैं, अगर वो देख ले तो मुझे विश्वास हो जाएगा। तो जाके दोपहर का समय जो बताया था, दुर्गा जी के मंदिर में पूरी फैमिली आती है बच्चों को लेकर, बच्चों को छोड़ देती है खेलने के लिए मंदिर के अंदर, चिल्लाती, बच्चा खेलता रहता, उसमें सही में बैल आता है और बच्चे को मारता भी है, और बच्चा ऊपर से गिर के सिर फट जाता, मर भी जाता है। तो उसको विश्वास हो जाता है, नहीं नहीं ये बात सही है, मेरा मित्र यमदूत बन गया। तो बोलते हैं कि लेकिन मैं कितना मूर्ख हूँ, उससे मिल के बात ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं सब चेक करने के लिए आया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो बहुत दुखी रहता है। फिर दूसरे दिन फिर सुबह शौच करने के लिए जाता है, देखता है फिर वो उसका मित्र मिलता है, बोलता है कि तुम अभी गए नहीं? बोले नहीं मैं जो काम के लिए आया था हुआ नहीं। बोले नहीं मेरे सामने मैं तो मरता देखा उसको। तो बोले मरते देखे पर कुछ और नहीं देखा तुमने? क्या देखा? कई जगह में जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो तुलसी को उखाड़ दिया जाता है और मंदिरों में स्थान में रख दिया जाता है। वो जो बच्चा गिरा तो तुलसी के बगल में गिरा और उसका हाथ जो था मरते समय तुलसी के ऊपर स्पर्श था। बोलते मैं बहुत प्रयास किया, छूने जाता था ऐसा लगता था अग्नि है और मेरे शरीर में जलन हो रही थी, काफ़ी दूर जाने के बाद जलन कम हुई मेरी। तो मैं काफ़ी प्रयास किया, पास जाता था नहीं होता था, पास जाता था नहीं होता था। तो जब ये मैं देखा तो दूसरा यमदूत आया, उसने मुझे बताया कि भाई तुलसी का स्पर्श है उसके शरीर में, शरीर त्यागते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकते, अब उसका अगला जन्म मनुष्य का मिलने वाला है, अब तुम्हें दूसरी नोटिस है, तुम दूसरे जगह जाओ। तुम्हें ये बताने के लिए तुम्हें रुका हुआ था, ये सच्ची घटना है, कल्याण मैगजीन में आया था। और एक और घटना है, मधुसूदन प्रभु ने भी बताया था, एक किसी घर में, किसी ड्यूटी घर में लोग कीर्तन कर रहे थे, तो एक सुबह सुबह दरवाजा खटखटा किसी ने जोरदार, तो खोले तो चार मुसलमान लोग अंदर घुसे और उन्होंने स्टोरी बताई कि हमारे साथ क्या हुआ। बोलते हैं कि हम लोग घर में किसी का मुर्गा को काट वाट के वाइन पीना सब खाना पीना कर रहे थे, तो क्या हुआ कि अचानक से तीन काले काले व्यक्ति दिखे मारने आए। जब मारने आए तो क्या किए, वो चारों के चारों डर के, मतलब वो यमदूत ही थे, वो लोग डर के क्या किए, जंप कर गए वहाँ से, और जंप किए तो वो फर्स्ट फ्लोर में ही थे, जंप किए तो फर्स्ट फ्लोर से जंप के नीचे किए और नीचे तुलसी का पौधा लगा हुआ था उसी के पास साथ गिरे और तुलसी का स्पर्श था, एक ही व्यक्ति का स्पर्श था। लेकिन क्या किए, जब देखे तीनों को पकड़ के ले जा रहे हैं, पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उसको नहीं पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को पकड़ लिया अपने मित्र को, तीनों ने जैसे इनको पकड़ा तो यमदूत के कहां से छूट गया शरीर, घबरा गया। तो इन लोगों को समझ नहीं आया, तो जिस घर में तुलसी रखा था उस घर वाले से पूछे कि ऐसा क्या हुआ, इसको तुलसी के पौधे को हमने छुआ तो ऐसे से जो तीन काले लोग थे बड़े भयंकर थे, तो समझ गए भाई ये कुछ यमदूत लाए इसको मारने के लिए। तो बोलते हैं कि ये तुलसी का पौधा इतना ज़बरदस्त है, इसका स्पर्श करने से यमदूत छू नहीं सकते, शास्त्रों में बताया गया। तो बोलते हैं कि और क्या करूँ फिर, हम लोग बच गए, बहुत अच्छा लगा, इसकी वजह से बच गए, हमें क्या करना चाहिए। बोले भगवान की भक्ति कीजिए, तुलसी जी की पूजा कीजिए, तो पास में एक सेंटर है वहाँ चले जाइए, वहाँ बताएंगे। तो हम लोग वहीं सुबह सुबह आए हैं, ये मधु सुंदर पर वहीं बैठे थे, हमने सामने घटना घटी। तो तुलसी का महत्व इतना है, तो सोचिए कि हम 24 घंटे को धारण नहीं करना चाहिए, है ना। आप सो रहे हैं, तुलसी धारण नहीं किया है, यमदूत आ गए और तुलसी कहाँ ढूंढते रहेंगे उस समय, इसलिए गले में धारण करके। आप बोलते हैं तुलसी धारण कैसे करें गले में, बोल जी हम तो वो खाते हैं ये खाते हैं, है ना। अरे ठीक है खा देते, छोड़ दीजिए आज, मरने से तो अच्छा है ना, मरोगे यमदूत ले जाएंगे नरक में जो पिटाई करेंगे हजारों सालों तक, उससे अच्छा कि छोड़ दीजिए तुलसी धारण कर लीजिए। जब डॉक्टर बोलता है कि आप मर जाओगे और आपको बहुत पीड़ा होगी शरीर में, तो क्या सोचते हैं हम लोग, डॉक्टर साहब कोई उपाय बताइए। बोले ये दवाई खाओ, हाँ ये दवाई खाने तैयार है, आप कोई परहेज करना पड़ेगा, ये मत खाना। मेरे चाचा हैं बहुत करोड़पति हैं, उनके बहुत सारे होटल्स हैं, पहले ब्रेड बेचा करते थे, मुझे छोटा था स्वीट बन देते थे खाने के लिए, आज बहुत करोड़पति। तो उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो डॉक्टर उनको बोला सिर्फ जौ खाना, जौ जानते हो, जौ को उबालना और उसका सिरप पीना बस, और कुछ नहीं खा सकते हो, करोड़पति फिर भी देखो वही खा रहे हो, उसके सिवा कुछ नहीं खाते, क्यों तो बचना है। तो वैसे हमें बचना है तो प्याज लहसुन ये सब चीज़ें त्याग कर कंटे वाला धारण कर लीजिए, मन का जीवन तो पक्का है, यहाँ रहेंगे तुलसी जी रहेंगे। और तुलसी जी की बताते हैं 333 बताया गया है हरि भक्ति विलास में, क्या तुलसी धारण करते हैं तो आपका शरीर भी पवित्र हो जाता है, और तुलसी जी की अत्यंत कृपा होती है, इतनी कृपा होती है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा इस समय बाद। तो इसलिए कंठी माला धारण करना चाहिए सबको कंपल्सरी, सोची मत, देखिए आप धारण करेंगे अब नियम बना लीजिए प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, चाय छोड़ना पड़ेगा। तो आप हर्बल टी लीजिए, कृष्ण भगवान को तो एक दिन में छोड़ दिया, एक दिन में, उनकी उम्र के हिसाब से उनकी ज़्यादा आदत है, वो 10 साल की उम्र से पी रहे हैं, 50 साल की आदत, 50 साल की आदत एक दिन में छोड़े, 10 दिनों तक उनको बहुत कष्ट हुआ लेकिन नहीं पिए। तो जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हुआ तो क्या होगा, छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं टिक से पढ़ो फेल हो जाओगे, हाँ उसको सिखाते हैं हम लोग दृढ़ निश्चय करो बेटा, दृढ़ निश्चय करो फेल हो जाओगे, अपने आप को शिक्षा नहीं देते हम लोग, हमारे लिए तो कोई सब नियम ऐसे हैं। बच्चा गाली देता है क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं गाली देते हैं, गलत बात है। तो चाय पीना तो गलत बात है, बच्चा बोल देगा आप चाय पीते हो तो तब क्या जवाब दोगे, है करना पड़ेगा। ये सोच लीजिए अजीब बात लगती है, डॉक्टर बोलता है कि छोड़ दो तो छोड़ देते हैं, भगवान बोलते तो कोई नहीं छोड़ते, डॉक्टर बड़ा है क्या भगवान से, क्लास में डॉक्टर ही बोलता है अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, घूम नहीं जाता है डॉक्टर भगवान के पास जाता है। डॉक्टर अपने आप को बचा सकता है क्या, तो आप बोल सकते मुझे बचा लिया था, अपने आप को बचा सकता है नहीं, माँ बाप को बचा नहीं सकते, मरते व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं माँ बाप, भगवान ही बचा सकते हैं आपको। तो ये भगवान पूरा कंठी माला पहनना है तो एक छोटी सी चाय नहीं छूट पा रही है, नहीं नहीं चाय से कोई बीपी नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है, दूध पीजिए इतना सारा चीनी डाल के, नमक टाइम से खाइए, सब बीपी के बहाना है। वो ऐसा डॉक्टर भी है उसको तो गोली गोली मार देना चाहिए डॉक्टर के, झूठ बोलता है। और भी डॉक्टर हैं संसार में, उनसे पूछिए वो बताएंगे आपको, कोई झूठ बात है कि चाय और कॉफ़ी से बीपी मेंटेन रहता है, ये नहीं बताया उस उन्होंने कि इतनी बीमारियाँ क्या होती है उससे, चाय कॉफी कितनी बीमारियां तो डॉक्टर नहीं बताता साइड इफेक्ट। अफीम खाई अफीम, उससे बहुत सारा सब तबियत ठीक हो जाएगा। हाँ कई लोग अफीम खा रहे हैं शक्ति बहुत आती है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट क्या है भी देखना पड़ेगा। बियर पीने से शरीर मोटा हो जाता है, बियर पीजिए फिर बियर बन जाइए भालू की सुबह। ऐसा थोड़ी होता है। लोग बोलते प्याज लहसुन से ना शरीर में डाइजेशन अच्छा रहता है और लू नहीं लगता है, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता है। तो क्रोसिन खाने से बुखार चला जाता, नहीं चला जाता है? तो क्रोसिन की सब्जी बनाते हैं क्या हम लोग? नहीं बनाते ना। और भी तो चीजें हैं जिससे कि लू नहीं लगता है, और भी तो चीजें हैं जिससे स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो खाइए। कौन बोलता है यहाँ खाते स्वाद नहीं मिलता? वो यहाँ जो बनाते हैं स्वाद नहीं मिलता है? ऐसा बनाई है ना, ऐसा सीखिए। आप आकृष्ण लक्ष्मी माता जी को जानते हैं, अनुराधा माता जी हैं, उनको कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो उनके हस्बैंड यही शिकायत करते थे प्याज लहसुन बंद कर दिया है, कैसे बनाते हैं मरीज वाला खाना है, ऐसे बोलते थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनानी सीखी, भक्तों से सीखिए। हम पूरा दोष हस्बैंड को परिवार को देते हैं, 100% दोष हमारा है। ऐसे ऐसे डिशेज बनाई है कि बोले नहीं पहले से अच्छा प्रसाद बन रहा है, ऐसा बता दीजिए, ऐसा बनाइए उनके मुंह से निकले। उनके हस्बैंड ने मुझे स्पेशली कहा कि स्कॉन का सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ, इतने सारे व्यंजन खाने मिलते हैं और भी स्वादिष्ट। उनके हस्बैंड ने मुझसे कहा तो सीखिए। इतनी सारी माता है, इतने बड़े बड़े बनाती हैं, अनुज माता जी है, भक्ति प्राण माता जी, लोग बहुत अच्छे डिशेज बनाते हैं, उनसे सीखिए और बनाइए खिलाइए। बनाने का ढंग होना चाहिए बस। पुराने जमाने प्याज प्याज लहसुन कहाँ होता था, लोग बनाते थे, तरीका सीखिए बस। चाय के लिए आपको दिक्कत है बताते हैं, धनिया ले आइए, खड़ा धनिया, उसको रोस्ट कर दीजिए एकदम ब्राउन रोस्ट, और फिर उसमें गुड़ डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, एकदम कॉफ़ी टेस्ट आएगा, चाय का टेस्ट आएगा एकदम। बनाना आना चाहिए। मेरे सिस्टर वो बनाती है, गेहूं को फ्राई कर देगी ब्राउन और उसको निकाल कर रोस्ट कर देगी गुड़ के साथ, और उसको डब्बे में रख देगी, एकदम कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। आपको दूध मिला है सर का कॉफ़ी है, पर एक महीने के बाद वो टेस्ट गुड़ का आने लगता है बस। आप हर 15 दिन मनाइए, कॉफ़ी का टेस्ट आएगा, और टेस्ट ही और कुछ नहीं है, बाकी सब फालतू बातें, बीपी वीपी है कुछ फालतू बातें हैं। जंदूत आएगा तो देखते हैं बीपी बढ़ेगा कि लो होगा। हाँ तो फिर आप अच्छे से खाइए पिए, अच्छा ध्यान रखिए, चिंता मत कीजिए, बीपी अपने आप मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, तो भक्त प्रेशर हो जाएगा। अगर लिखवा लिए तो ठीक है, लेकिन नहीं लिखवाना नहीं चाहिए। मतलब देखो बेसिकली हम लोग हाथ में लिख दिए फिर उसको गंदे चीज़ें छू रहे हैं, सब अवॉइड करना चाहिए। हाँ वो तो गलती से हो गया, क्या करें, क्योंकि हमारा हाथ अशुद्ध होता है, चीज़ें शुद्ध होती। नहीं नहीं तेल प्रॉपर लगे, इतना टाइम कितना थोड़ा चला, प्रैक्टिस वाली बात है, सीधी सी बात है। लोग बोलते हैं ना वो मशीन से लगाते हैं जो छापा आता है, उससे भी लगा सकते हैं, एक मशीन आती है ना जो मशीन क्या लकड़ी का खांचा रहा सांचा रहा, उसे लगाया लगा दिए आप, वो कोई व्यक्ति तिलक घोल के सांचा से लगाएगा ना, उससे स्पीड से हम लोग उससे ज़्यादा स्पीड से लगाते हैं। आप ऐसे खींचिए बीच में गायब गायब हो जाएगा, घोल बना ही खींच दीजिए, बहुत अच्छा शेप जरूरी नहीं है शरीर में, तिलक सामने देखते हैं इसलिए जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि फिर इसके ऊपर की दो पत्तियां बना दिया नीचे छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं। कितना समय लगता है, इधर 2 सेकंड लगता तो 1 सेकंड नीचे लगेगा और क्या, ये सब प्रैक्टिस वाली बात है। हम तिलक शुरू में लगा देते तो 1 घंटा तो मिटाते रहते थे, फिर मिटाते फिर लगा देते फिर मिटाते फिर लगा देते, है ना, टेढ़ा हो जाता, कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे, है ना, गाँव का रोड होता ना वैसे बन जाता पगडंडी जैसा, अभी हाईवे जैसा दिखता है, यहाँ तक जाता पूरा, है ना, क्यों, क्योंकि अब प्रैक्टिस है। रोज लगाएंगे तो अपने आप स्पीड भी बढ़ जाएगी, टाइम भी कम हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। नहीं लगाएंगे जन्माष्टमी में, लगाएंगे एक बार संसार में, साल में एक बार, तो तिलक वैसे लगेगा, रोज लगाना पड़ेगा। और सीखिए तिलक लगाने कला है, मैं एक बता देता हूँ आपको तिलक कैसे लगाएं, तो अच्छा भी तिलक लगेगा और देखने भी अच्छा लगेगा और जल्दी भी लगेगा। आपकी जो दो आईब्रोज है ना, जब इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ से आईब्रो समझ लीजिए बढ़ा दिया जाए, तो जहाँ पर टच होती है वहाँ से आप तिलक लगाना शुरू कीजिए, ऊपर की ओर खींचिए, ऐसे तिलक लगाइए, तिलक के अग्रभाग में तिलक को समेटिए और यहाँ पर दबा के खींचिए, दबा के ऊपर की ओर खींचिए, तो दबा के खींचेंगे ऊपर की ओर तो बीच में गैप आ जाएगा अपने आप, ठीक है। और फिर तिलक लीजिए नीचे की ओर खींचिए, ऐसे ऐसे खींचिए, उंगली उंगली की तरीका देख रहे हैं ऐसे, तो जैसे दबाएंगे वो चौड़ा हो जाएगा, ऊपर की खींचेंगे तो नुकीला हो जाएगा अपने। फिर बात जी एक बार में लगा देते, ऐसे तिलक लगा देते, ऐसे खींचेंगे एक दो तिलक हो गया, फटाफट लगाने समय 13 मिनट में प्रभुपाद जी शौच से स्नान करके तिलक लगाए, धोती पहन लेते थे, 13 मिनट में सब तिलक ही लगाते होंगे नहीं, तिलक लगाने तो ये जो आईब्रोज है आपके जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वहां से स्टार्ट कीजिए, ऊपर से स्टार्ट मत कीजिए, कई ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसलिए तिलक का शेप अच्छा नहीं बनता है। कहाँ से स्टार्ट कीजिए, जहाँ पर आपकी भौहें हैं उसको अगर बढ़ाओगे तो जाके कट कटेगा, एकदम ज्वाइंट होगा पॉइंट, वहाँ से स्टार्ट कीजिए ऊपर की ओर तो इजी बनेगा, ठीक है। किसी किसी का जमीन थोड़ा ऊपर नीचे होती है, तिल टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, कोई बात नहीं जैसा बन रहा है, भगवान पत्ता थोड़ी देखने आएंगे, ये अच्छा पत्ता है तुम चलो उसका भेजे, तुम भी चलो खराब है तुम भी रुको 2 साल, ठीक है। तीन 5 रख लो बोलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कई चीजें शास्त्रों में जो है इसका उत्तर नहीं है, उसको नियम पालन करना चाहिए, 1 3 7 1 3 5 7 9 11 ऐसा लगा सकते हैं, हाँ ठीक है। और नंबर्स होते हैं वो लगाया जाता है, 3 के लिए आप उत्तर दे देना, गुरु साधु शास्त्र इसके माँ ब्रह्मा विष्णु महेश ना, तीनों गुणों से परे बता दो उसके, ऐसे शंख है हड्डी है उसको मुंह में भी लगाते हैं, भगवान का चढ़ाते भी हैं, भगवान की आंखें उसी से बनती है, बता वो जो व्हाइट कलर का जैसे राधा रमन जी का है वो शंख से बना, काट के बनाया गया वो तो शंख है, शंख क्या हड्डी है एक जानवर का, इसके नीचे पूरा उसका मांस होता है वो ऐसे चलता रहता है, उसको लोग निकालते हैं जो मर जाता है निकालते हैं उसको, तो शरीर का मांस अंदर से गला के निकाल लेते हैं और जितना गैप बिगड़े ना उसके अंदर पूरा मांस रहता है, ये शरीर की हड्डी है उसके शेल है, तो इसको वो इतनी पवित्र क्यों मारे, उसको फूंक भी रहे हैं और जल भी चढ़ा रहे हैं पूजा कर रहे हैं, उसको हड्डी को छूने से तो क्या होता है, मरे हुआ चीज़ की हड्डी छूने से क्या होता है, अब पवित्र नहाना पड़ता है और यहाँ से उसी से नहला रहे हैं भगवान को, उसी से अभिषेक करते हैं, तो कोई आंसर नहीं है, एक ही आंसर भगवान की मर्जी। मृदंग गाय का चमड़ा होता है आपको पता है, अपने आप जो गाय शरीर त्याग देती है उसका चमड़े को यूज करते हैं मृदंग बजाने के लिए, अब उसको बजाते हैं भगवान के कवाल, कोई आंसर नहीं है, बोलिए शास्त्रों में कई चीज का उत्तर नहीं होता है, वो भगवान की इच्छा है, और कुछ समय के बाद साइंस को ढूंढता पता चल रहा था, जैसे कि गौमूत्र, गौमूत्र पवित्र है ना, गौमूत्र में बताते हैं जिस स्थान में छिड़क जाए वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, निवास करते हैं, तो लोग मानते हैं मूत्र तो मूत्र और मल को क्या माना गया है अपवित्र, इसका भी शास्त्र में उत्तर नहीं है, इसका भी उत्तर नहीं है, बताया गया है कि गोबर को लीपना पवित्र माना गया है, शास्त्र में लिखा है, आप पूछ दो क्यों, तो कोई उत्तर नहीं है शास्त्र में इसका, लेकिन साइंस ने निकाला नहीं इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल चीज है, इसको खाने से बीमारियां ठीक हो जाती है, अब वो प्रूफ कर रही है उसी चीज को, तो शंख और मृदंग का प्रूफ हो जाएगा, 3 अगरबत्ती का भी प्रूफ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बस 1-2 करोड़ साल क्या, हाँ ठीक बात है हो जाते हैं ठीक, पीछे गौमूत्र लेकिन सेवन करने का तरीका डॉक्टर से पूछना, गौ अर्क ले जाते गौमूत्र का अर्क बनाते हैं उस अर्क लीजिएगा, ठीक हरे कृष्ण।